कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव यशोदनंदन व्रज राधा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 राम राम राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राम जय कृष्ण बल राम जय कृष्ण बल जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनि प्रभुपा जय जय प्रभुपा जय जय प्रभु निताय गौर हरि वो निधाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री गौर निताय भगवान की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के भागवतम की कक्षा में। तो आज हम स्कंद 8 अध्याय 3 और श्लोक संख्या 13 से चर्चा करेंगे। क्या 13 है ना? हाँ, श्लोक संख्या 13 स्कंद 8 अध्याय 3 श्लोक 13। अध्याय का नाम है गजेंद्र की समर्पण स्तुति। तो इससे हम लोग आज चर्चा करेंगे। श्लोक सब लोग पीछे पीछे दोहराएंगे। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यम् सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। अनुवाद तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। कृपया पीछे दोहराएं। क्षेत्रज्ञाय बाह्य शरीर की प्रत्येक वस्तु जानने वाले को नमः। मैं नमस्कार करता हूं तुभ्यम आपको सर्व सब कुछ अध्यक्षाय अध्यक्ष को साक्षिणे जो साक्षी परमात्मा या अंतर्यामी हैं पुरुषाय परम पुरुष को आत्ममूलाय मूल स्रोत को मूल प्रकृतये पुरुष अवतार को जो प्रकृति तथा प्रधान के उद्गम हैं नमः। मैं नमस्कार करता हूं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। आप परमात्मा हर एक के अध्यक्ष तथा जो कुछ भी घटित होता है उसके साक्षी हैं। आप परम पुरुष भौतिक प्रकृति तथा समग्र भौतिक शक्ति के उद्गम हैं। आप भौतिक शरीर के भी स्वामी हैं। अतएव आप परम पूर्ण हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तात्पर्य कृपया श्रवण करें। श्रीमद् भगवद गीता 13.3 में श्री भगवान कहते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भरतवंशी, तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि मैं सारे शरीरों का भी ज्ञाता हूं। हम में से हर व्यक्ति सोचता है मैं यह शरीर हूं या यह मेरा शरीर है, किंतु वास्तव में सच्चाई इससे भिन्न है। हमें यह शरीर सर्वोपरि स्वामी द्वारा दिए गए हैं। जीव जो कि क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर का ज्ञाता भी है, वह शरीर का एकमात्र स्वामी नहीं है। शरीर के वास्तविक स्वामी तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जो परम क्षेत्रज्ञ हैं। उदाहरणार्थ, हम किराए का मकान लेकर उस मकान में रह सकते हैं, किंतु इस मकान का असली स्वामी तो मकान मालिक होता है। इसी प्रकार हमें भी किसी एक प्रकार का शरीर दिया जाता है जिससे हम इस भौतिक जगत का भोग कर सकते हैं, किंतु इस शरीर के वास्तविक स्वामी तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हैं। वे सर्वाध्यक्ष कहलाते हैं, क्योंकि इस भौतिक संसार में सारी वस्तुएं उन्हीं की अध्यक्षता में कार्य करती हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 9:10 में की गई है, जहां श्री भगवान कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती हुई सभी चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। प्रकृति से ना जाने कितनी तरह के जीव प्रकट होते हैं, जिनमें जलचर, पेड़ पौधे, कीट, पक्षी, पशु, मनुष्य तथा देवता सम्मिलित हैं। प्रकृति माता है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पिता हैं। अहम बीज प्रदा पिता। प्रकृति हमें भौतिक शरीर प्रदान कर सकती है, किंतु आत्मा के रूप में हम रहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही अंश रूप में। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 15:7 में हुई है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। जीव ईश्वर का अंश होने के कारण इस भौतिक जगत की उपज नहीं है। अतएव इस श्लोक में श्री भगवान को आत्ममूल अर्थात प्रत्येक वस्तु का मूल स्रोत कहा गया है। वे सारे जीवों के बीज रूप हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम। श्रीमद् भगवद गीता 14:4 में श्री भगवान कहते हैं, सर्वयोनि शुकौन्तेयः मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहम् बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, यह समझ लो कि सारी योनियों के जीव इस भौतिक प्रकृति में ही जन्म लेते हैं और मैं वीर्यदाता पिता हूं। पौधे, वृक्ष, कीड़े, जलचर, देवता, पशु पक्षी तथा अन्य सारे जीव श्री भगवान के पुत्र या अंश हैं, किंतु भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के साथ संघर्ष करने के कारण उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिलते हैं। मनः षष्ठाणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस प्रकार वे उस प्रकृति के पुत्र हैं जिसके वीर्यदाता पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान हैं। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है और जन्म मृत्यु के चक्र से एकमात्र मोक्ष या छुटकारे की विधि है पूर्ण आत्मसमर्पण। इसका संकेत नमः शब्द से मिलता है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। आप परमात्मा हर एक के अध्यक्ष तथा जो कुछ भी घटित होता है उसके साक्षी हैं। आप परम पुरुष भौतिक प्रकृति तथा समग्र भौतिक शक्ति के उद्गम हैं। आप भौतिक शरीर के भी स्वामी हैं, अतएव आप परम पूर्ण हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं और मैं भी आप सबको सादर नमस्कार करता हूं। आज इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से साल का पहला दिन है और पहले दिन की शुरुआत हो रही है बहुत ही सुंदर श्लोक से। और ये श्लोक जिस अध्याय में है उस अध्याय का नाम है गजेंद्र की समर्पण स्तुति। स्तुति मतलब प्रार्थना। प्रार्थनाओं का ही ये पूरा एक श्लोक की श्रृंखला चल रही है। गजेंद्र आप सब जानते हैं, गजेंद्र जो कि बहुत बड़ी समस्या में फंस गए थे और उनका जो पैर था वो एक क्रोकोडाइल मगरमच्छ ने जकड़ लिया था। बहुत ही भयावह स्थिति थी जिसमें गजेंद्र फंस चुके थे। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कई जगहों पर कि ये स्थिति हम समस्त जीवात्माओं की है। जैसे गजेंद्र मृत्यु के जबड़े में फंसा हुआ था, उसी प्रकार से हम समस्त जीवात्माएं भी मृत्यु के जबड़े में फंसे हुए हैं। किस समय कब मृत्यु आ जाए कोई भरोसा नहीं है। तो उसी श्रृंखला में ये गजेंद्र की प्रार्थनाओं का श्लोक जो है ये चल रहा है, प्रार्थनाएं चल रही हैं, जिसमें आज गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं कि आप परमात्मा हैं, हर एक के हृदय में बैठे हुए हैं, हर एक के अध्यक्ष हैं। जैसे हमारे इस्कॉन के मंदिरों के अध्यक्ष होते हैं जिनके पास सारी जिम्मेदारी होती है कि मंदिर का देखभाल करना, सब सिस्टम प्रोग्राम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, इसी प्रकार के हम सब के शरीर में एक अध्यक्ष बैठे हुए हैं। और वो अध्यक्ष कौन है? परमात्मा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं क्या, उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि उक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। हमारे शरीर में ही बैठे हुए हैं कौन? उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरः। वही है उपद्रष्टा, वही है अनुमंता, वही है भर्ता और वही है भोक्ता। तो परमात्मा के रूप में भगवान हम सबके शरीर में बैठे हुए हैं और जो कुछ भी घटित होता है उसके साक्षी हैं। और इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से हम सबको बता रहे हैं कि कैसे सभी के जीव प्रदाता जो बीज प्रदाता जो पिता हैं वो हैं भगवान श्री कृष्ण। सर्व योनिषु कौन्तेया मूर्तया संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदापिता। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कई जगह पर बताते हैं कि मैं ही हूं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो ये जान करके कार्य करता है कि हम सबके स्वामी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो हम उसी वृंदावन धाम में बैठे हुए हैं जो हमारे स्वामी की भूमि है, भगवान श्री कृष्ण की भूमि है वृंदावन धाम। सो आज हम लोग चर्चा करेंगे पावर ऑफ प्रेयर्स, प्रार्थनाओं का कितना महत्व है हम सबके जीवन में। जैसे ये भी है गजेंद्र की प्रार्थना, इसी प्रकार से हम श्रीमद् भागवत में देखते हैं कि कई जगहों पर क्या मोस्टली श्रीमद् भागवत जो है वो प्रार्थनाओं से भरा हुआ है, प्रार्थनाएं हैं, है कि नहीं। शुरुआत होती है तो पहले स्कंद में प्रार्थनाएं आती हैं किसकी, महारानी कुंती की प्रार्थनाएं। कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं, इधर से किसी ने कहा भीष्मदेव प्रार्थना कर रहे हैं। पहला स्कंद से ही शुरुआत होती है प्रार्थनाओं से, है कि नहीं। कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं क्या भगवान से, विपदा संतु ता सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे भगवान श्री कृष्ण, जब तक हमारे जीवन में विपदाएं थी तब तक आप हमारे जीवन में थे, अब जैसे ही सब कुछ अच्छा हो गया है, हमें राज्य मिल गया, हमें जो है मेरे पुत्र को जो है राजा बना दिया गया, जैसे ही सब कुछ ठीक हो गया आप हमें छोड़ करके द्वारका जा रहे हैं, तो ऐसा जीवन हमें नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो क्या हो कि हमारे जीवन में विपदाएं आती रहें ताकि आप हमारे जीवन में बने रहें। ऐसी प्रार्थना आम जीवन में क्या कोई कर सकता है, हमारे जीवन में विपदाएं आती रहें, बड़ा मुश्किल है। लेकिन महारानी कुंती हमें सिखा रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अगर जीवन में अपनाना है तो कोई भी प्रार्थना करनी पड़े उसको करना चाहिए, कोई भी स्थिति हो, चाहे भले ही जीवन में कष्ट हो भगवान श्री कृष्ण हो, फिर भी हमें वो प्रार्थना करनी चाहिए। तो कुंती महारानी की प्रार्थना है, भीष्मदेव प्रार्थना कर रहे हैं। और कैसी स्थिति में प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, बलराम हॉल में बढ़िया कारपेट पे नहीं बैठे हुए थे। भीष्मदेव कहां पर हैं, भाड़ों की सैया पर, बहुत कष्ट हो रहा है शरीर में, भौतिक शरीर में, उस स्थिति में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो एक हमने देखा कुंती महारानी जो जीवन में सारे सुविधाएं आ गई तब प्रार्थना कर रही हैं, एक हम देख रहे हैं भीष्मदेव जो जीवन में इतने कष्ट हैं, कष्ट की स्थिति में है तब प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब जीवन की हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमें प्रार्थनाएं करनी चाहिए, प्रार्थनाओं का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या प्रार्थना करने के लिए बहुत ही पढ़ा लिखा विद्वान होना पड़ेगा, प्रार्थनाएं करने के लिए क्या बहुत बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान होना पड़ेगा? तो गजेंद्र तो मनुष्य भी नहीं थे, गजेंद्र तो एक पशु की योनि में थे, पशु की योनि में भी प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए पशु की योनि में भी प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे भागवत, इसी श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है किसकी, ध्रुव महाराज की। ध्रुव महाराज छोटे से 5 वर्ष के बालक, वो तो किसी स्कूल भी नहीं गए, गुरुकुल भी नहीं गए, 5 वर्ष के बालक भी जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। कैसे प्रार्थना कर पाए, जब भगवान उनके सामने प्रकट हो गए तो उनको नहीं पता थी कौन सी प्रार्थना करनी है, कैसे हमें क्या करनी है, बट क्योंकि अंदर से उनकी बहुत इच्छा थी कि मुझे भगवान से कुछ प्रार्थना करनी है, कुछ प्रेयर्स करनी है भगवान के लिए, तो भगवान ने क्या किया, अपना शंख जो है उनके माथे पर टच करा दिया। भगवान का शंख टच कराते ही ध्रुव महाराज जो है प्रार्थनाएं करने लगे, और प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान से क्या मांग रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं कि मैं तो एक कांच के टुकड़े के लिए जो है इतनी तपस्या कर रहा था, मुझे तो साक्षात कौन मिल गए, हीरा डायमंड मिल गया है मुझको। ये होती हैं प्रार्थनाएं। उसके बाद एक और पांच वर्ष के बालक, कौन थे पांच वर्ष के बालक? प्रहलाद। प्रहलाद महाराज भी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थनाएं ही प्रार्थनाएं। प्रहलाद महाराज क्या प्रार्थनाएं कर रहे हैं? प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, एवं जन्म निपतितम भव प्रहवा अही कूपे, मेरा जो जन्म है, एवं जन्म निपतितम, मेरे मैं जन्म जन्मांतर से अपनी भौतिक इच्छाओं के कारण इस भव कूप में गिरा हुआ हूं। एवं जन्म निपतितम भव प्रभवा अही कूपे कामाभिकामम अनुयह प्रपतन प्रसंगात कृत्वात्मसात सुरशिणा भगवन ग्रहीतः सोहम कथम नु विसृजे तव भृत्य सेवाम। अपनी भौतिक इच्छाओं के कारण मैं इस भव कूप में गिरा हुआ हूं, लेकिन मैं आपसे अंत में यही प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे कोई भी आशीर्वाद देना चाहते हैं तो केवल एक ही आशीर्वाद दें। क्या? तव भृत्य सेवाम। मतलब क्या? आपके जो सेवक हैं, कौन? भगवान के सेवक कौन? नारद मुनि। आपके जो सेवक हैं और मेरे गुरु जो हैं नारद मुनि, मैं उनकी सेवा में लगा रहूं। डिवोशनल सर्विस, गुरु भक्ति, गुरु सेवा मांग रहे हैं कौन? प्रहलाद महाराज। तो हम देखते हैं कि पूरा भागवतम जो है इन्हीं प्रार्थनाओं से भरा हुआ है। आप देखिए, एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए, तो एक तो हमने बता दिया कुंती महारानी, भीष्म देव, पांच वर्ष के दो बालक ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज। अब क्या राजा लोग प्रार्थना नहीं करते? राजाओं के जीवन में तो कोई कष्ट नहीं है, सब सुविधाएं हैं, क्या राजा प्रार्थना नहीं करते? तो एक राजा हुए, राजा कुलशेखर, राजा कुलशेखर। राजा कुलशेखर की प्रार्थनाएं कौन सी पुस्तक में मिलती हैं, किसको पता है? हाँ, मुकुंद माला स्त्रोत। तो मुकुंद माला स्त्रोत में बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं, किसकी? राजा कुलशेखर की। भगवान के बहुत महान भक्त थे राजा कुलशेखर। मुकुंद माला स्त्रोत क्या? मुकुंद मूर्धना प्रणिपात्याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अविस्मृति त्वचरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु भवत् प्रसादो। हे मुकुंद, हे माधव, मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्याचे, आपसे मेरी बस यही प्रार्थना है कि जन्म जन्मांतर आपका स्मरण करूं, भवंतम एकांतम यंतम अर्थम अविस्मृति त्व चरणारविंदे, कि आपके चरण कमल को मैं कभी भी भूलूं नहीं, कभी भी भूलूं नहीं, अविस्मृति ना हो मेरे को। भवे भवे मेस्तु भवत प्रसाद, बार बार आपसे, पुनः पुनः आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूं। क्या? कि मैं आपके चरण कमलों को भूलूं नहीं। और राजा कुलशेखर क्या प्रार्थना करते हैं? राजा कुलशेखर बताते हैं कि औषधि हम सबको लेनी चाहिए, हमारे लिए भी बता रहे हैं। कौन सी औषधि? प्रसाद माहौल में काढ़ा मिलता है। क्या ठंडी के लिए हमें काढ़ा मिलना चाहिए? कौन सी औषधि? कौन सी औषधि राजा कुलशेखर बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? कि एक दिन ये शरीर क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, है कि नहीं? इदम शरीरम शतसंधि जर्जरम पतति अवश्यम परिणाम पेशलम। ये जो शरीर है ये एक दिन जर्जर हो जाएगा, और इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा? अंत परिणाम इस शरीर का क्या होगा? मृत्यु। पतति अवश्यम परिणाम पेशलम। तो आगे क्या कह रहे हैं? किम औषधिम पृच्छसी मूढ़ दुर्मति, हे मूढ़ दुर्मति, तुम कौन सी औषधि ढूंढ रहे हो? कोविड शील्ड, कोवैक्सीन, बूस्टर डोज, कौन सी औषधि, कौन सी वैक्सीन खोज रहे हो तुम? हाँ, नई वैक्सीन लगाएंगे तो कोरोना हो जाएगा। एक रोग, रोग ऑलरेडी हो रखा है, भव रोग, जिसमें हम क्या है, असली को नकली और नकली को असली समझते हैं। ये रोग ऑलरेडी हो रखा है, तो इस रोग से छुटकारा पाने के लिए औषधि बता रहे हैं। कौन? राजा कुलशेखर। किम औषधिम पृच्छसी मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिवा। कौन सी औषधि पीजिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निरामयम कृष्ण रसायनम पिवा। रसायनम, रसायन मतलब औषधि। तो हमें जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए वो कैसे करना चाहिए? जैसे हम कोई दवा ले रहे हैं, औषधि, दवा लेते समय बहुत सावधान रहते हैं, कहीं पीली की जगह लाल ना ले लें। पीली की जगह अगर लाल गोली हमने ले ली तो क्या होता है? उसका रिएक्शन आ जाएगा और बीमारी बढ़ सकती है। हाँ, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र भी हमें कैसे लेना चाहिए? औषधि की तरह रसायन बहुत ध्यान पूर्वक लेना चाहिए। एक एक शब्द जैसे कैसे जा रहा है हमारे अंदर? औषधि की तरह जा रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। औषधि की तरह, एक एक शब्द औषधि की तरह पीना चाहिए हम लोगों को। राजा कुलशेखर भी प्रार्थना कर रहे हैं कि बस मुझे जो है आपके चरण कमल ना भूलूं और इसी औषधि को मैं जन्म जन्मांतर पीता रहूं। प्रार्थनाएं कितनी महत्वपूर्ण है तो ये, और हम लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ी कृपा है राधा श्याम सुंदर की, कृष्ण बलराम की, कि हमें ऐसे आचार्य मिले जिन्होंने हमारे पूरे दिन के शेड्यूल में प्रार्थनाएं दे दी हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम सब इस्कॉन के भक्तों के लिए जो सर्वप्रथम पूर्ण प्रतिष्ठित जो शिक्षा गुरु हैं वो हैं श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद जी संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने संस्था के सारे नियम बनाए। तो सबसे पहला नियम दिन शुरू होते ही, किससे कैसे दिन शुरू होता है हम सबका? प्रार्थनाओं के साथ, प्रार्थनाओं के साथ। वृंदावन के अलावा जिस भी मंदिर में है हम, तो वहां पर प्रार्थना करते हैं। कौन सी? संसार दावा नल लीढ़लो का त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणान वस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। वंदना, वंदना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। किसके चरणों में? गुरु के चरणों में। गुरु की प्रार्थना से देखिए दिन शुरुआत हो रहा है। शुरुआत ही दिन की कैसे हुई? प्रार्थनाओं के साथ। उसके बाद क्या प्रार्थना? नरसिंह देव की प्रार्थना। उसके बाद क्या प्रार्थना? तुलसी महारानी की प्रार्थना। तुलसी महारानी से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें क्या दीजिए? मोरा ए अभिलाष विलास कुंजे दियो वा। यही है विलास कुंज, और क्या है विलास? यही हमारा निधिवन। यहां देखिए सब भक्त बैठे हुए हैं, जहां कृष्ण कथा है वही है विलास कुंज, वही है कुंज, वहीं पर राधा कृष्ण नित्य निवास करते हैं। यही हमारा अभिलाष होना चाहिए कि भक्तों का संग हमेशा मिलता रहे। साधु संग सर्व शास्त्र कहे लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हो। साधुओं का संग। और हम क्या तुलसी महारानी से प्रार्थना करते हैं कि यही निवेदन, क्या निवेदन करते हैं तुलसी महारानी से? सब लोग क्या निवेदन करते हैं? सखीर अनुगत करो। सखीर अनुगत, किसके अनुगत हम सब होना चाहते हैं? प्रभुपाद जी ने बताया भक्ति रसामृत सिंधु में कि हम सब किसके अनुगत हैं? रूपानुग, रूप गोस्वामी जी के अनुगत हैं हम सब। किसके अनुगत हैं हम सब? रूप गोस्वामी जी के। उन्हीं रूप गोस्वामी जी के अनुगत हैं हमारे श्रील प्रभुपाद जी। और अगर हम श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को जीवन में उतारते हैं तो हम किसके अनुगत हैं? रूप गोस्वामी जी के। तो सखीर अनुगत करो का क्या मतलब है? हम सब प्रभुपाद जी के अनुगत हो जाएं, यही प्रार्थना होनी चाहिए, तुलसी महारानी की प्रार्थना। उसके बाद फिर क्या प्रार्थना? फिर सब लोग बैठ के चैतन्य शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं, चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना। चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रार्थना हम सबको बताई है, उन प्रार्थनाओं में, प्रार्थनाओं के चार अंग हमको चैतन्य महाप्रभु ने बताए। क्या क्या चार अंग हैं? तो लिखेंगे, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, जो लिख रहे हैं वो लिख भी लें। प्रार्थनाओं के चार अंग क्या क्या होते हैं? सबसे पहला अंग होता है भगवान का गुणगान करना। क्या? गुणगान। सबसे पहला अंग होता है प्रार्थनाओं में गुणगान करना। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रात् पिता नियमितः स्मरणेन कालः। नाम नाम अकारि बहुधा, आपके नाम में सारी शक्ति आपने डाल दी है। आपका नाम बहुत पावरफुल है। भगवान का ग्लोरिफिकेशन, भगवान के नाम का ग्लोरिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन बोले तो हिंदी में गुणगान, गुणगान करना, गुणगान। कुंती महारानी गुणगान कर रही हैं भगवान का। नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांगिरे। प्रार्थना कर रही हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रार्थना कर रही हैं। ग्लोरिफिकेशन, भगवान का ग्लोरिफिकेशन। आपकी नाभि पंकज के, पंकज की वो जो कमल की पंखुड़ी है उसके समान, आपके नेत्र, भगवान का गुणगान, ग्लोरिफिकेशन। तो सबसे पहले जो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमारे आचार्यों ने, सब महाजनों ने, चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया, प्रार्थना में सबसे पहला अंग क्या है? भगवान का गुणगान। दूसरा अंग होता है प्रार्थनाओं का जिसमें हम दिखाते हैं अपनी विनम्रता, ह्यूमिलिटी एंड ग्रेटिट्यूड, मतलब विनम्रता और कृतज्ञता। क्या दिखाते हैं? विनम्रता और कृतज्ञता। नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रात् पिता नियमितः स्मरणेन कालः। उसके आगे एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवमी दृशम इहा जनिनानुराग। हम अपनी ह्यूमिलिटी दिखा रहे हैं, कैसे अपनी कमियां बता के कि आप कैसे नाम में भी मेरा अनुराग नहीं है। ह्यूमिलिटी, विनम्रता के साथ। दूसरा अंग प्रार्थना का क्या हो गया? विनम्रता और कृतज्ञता। एक कोटेशन है, हमारे आचार्य कहते हैं क्या, इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल देन यू आर ग्रेट फूल। अगर हम कृतज्ञ नहीं हैं तो हम सबसे बड़े मूर्ख हैं। कृतज्ञता किस चीज के लिए कृतज्ञता होनी चाहिए? बड़ी बड़ी चीजों के लिए नहीं, छोटी चीज के लिए कृतज्ञता। क्या? कि भगवान हम सबको ऑक्सीजन देते हैं 24 घंटे सातों दिन फ्री सप्लाई, वो भी कहां पर? नोज स्टेप। एक तो डोर स्टेप पे सप्लाई होती है, यहां नोज स्टेप पे, कहीं जाने की जरूरत नहीं ऑक्सीजन लेने के लिए। कहां उपलब्ध है? हमारे पास। कोरोना की जब सेकेंड वेव आई, एक एक ऑक्सीजन का सिलेंडर 1,00,000 रुपए का मिल रहा था, 80,000-90,000 ऑक्सीजन का सिलेंडर। ऑक्सीजन जो फ्री है, जिसकी हम कोई वैल्यू नहीं करते, वो ऑक्सीजन का सिलेंडर इतना महंगा बिक रहा था। उस समय पर पता लगा सबको कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू है। और हमें कहां मिलता है? फ्री में। कोई वैल्यू नहीं, नोज स्टेप, हमें कोई वैल्यू ही नहीं है ऑक्सीजन की। तो इसलिए हमारे अंदर कृतज्ञता होना चाहिए भगवान के प्रति। भगवान, बहुत बड़ी बड़ी चीजें के लिए तो हम क्या ही भगवान को कृतज्ञ होंगे। बेसिक चीज वायु, जल, इसके लिए हमें भगवान के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। पहली बार जब मैं दिल्ली आया 2009 में, 8 में, तो देखा कि यहाँ पानी भी खरीद के मिलता है पीने के लिए। उसके पहले हम लोग घर पर थे तो नहीं मिलता, लखनऊ में नहीं मिलता था, हम लोग शरीर पानी पीते थे, फ्री था। दिल्ली आके पता लगा पानी भी खरीद के पीना पड़ेगा। हाथ धोने के लिए अवेलेबल है, बट पीने के लिए खरीदना पड़ेगा। पानी की वैल्यू, सांस की वैल्यू, छोटी छोटी चीजें, भगवान के लिए हमें क्या होना चाहिए? कृतज्ञ होना चाहिए। तो दूसरा अंग हमारी प्रार्थनाओं का क्या होना चाहिए? विनम्रता और कृतज्ञता। तीसरा अंग जो भगवान से प्रार्थना करने के लिए हमारा होना चाहिए, वो होना चाहिए भगवान से कुछ वरदान मांगना चाहिए, आशीर्वाद मांगना चाहिए। अच्छा प्रभु जी, हमें तो बताया जाता है निष्काम भक्ति, भगवद गीता में बताया गया निष्काम, कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकले अशांत। हमें तो निष्काम बताया गया है। यहां अंग आप बता रहे हैं कि कुछ आशीर्वाद मांगना चाहिए। भगवान से नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे? और किससे मांगेंगे? सरकार से? उसके लिए वोट देना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान से हमें मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? जो प्रहलाद महाराज मांग रहे हैं, गजेंद्र भी, गजेंद्र की प्रार्थनाओं में आप सबसे अंतिम प्रार्थना जो गजेंद्र की होगी स्थिति में, वो प्रार्थना में क्या मांगेंगे? वो मांगेंगे कि एकमात्र प्रार्थना यही रहती है कि वह जीवन की भौतिक धारणा से छूटकर श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे। गजेंद्र भी क्या प्रार्थना करेंगे लास्ट में? कि मैं आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहूं। प्रहलाद महाराज भी क्या प्रार्थना कर रहे हैं अंत में? कि आपके जो है भृत्य, जो है आपके सेवक, मैं उनकी सेवा में लगा रहूं। तो भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना? कि हे भगवान, मुझे आपकी सेवा हमेशा मिलती रहे, आपकी भक्ति हमेशा मिलती रहे। हरे कृष्ण महामंत्र की सिंपल सी परिभाषा, सरल सी परिभाषा क्या है? हे राधा, हे कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो ये प्रार्थना हम लोगों को, तीसरा अंग है, भगवान से क्या मांगना चाहिए? आशीर्वाद मांगना चाहिए, कुछ वरदान मांगना चाहिए। भगवान छोड़ते भी नहीं है, क्योंकि आप, हम दिन भर कर रहे हैं हरे कृष्ण कृष्ण, क्या आप चाहते हो प्रभु? अभी सुबह तो पढ़ा था, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम, फिर भी हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हो, क्या चाहते हो? नहीं, नहीं चाहिए ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम, क्या चाहिए? भगवान अंत वाली लाइन क्या थी? मम जन्मनी जन्मनेश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी, आपकी अहेतुकी भक्ति मुझे प्राप्त हो। अहेतुकी भक्ति मतलब जिसमें कोई हेतु ना हो, जिसमें कोई, मेरा कोई हेतु नहीं है। मैं सेवा करूंगा तो मेरा नाम अनाउंस होगा, ये प्रभु जी बहुत सेवा कर रहे हैं, सेवा प्रेमी प्रभु बहुत सेवा करते हैं, इनके लिए सब लोग हरि बोल बोलेंगे, हरि बोल। इसलिए सेवा नहीं करनी है। सेवा किस लिए करनी है? अहेतुकी, अहेतु, क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं इसलिए सेवा करनी है। तो तीसरा अंग क्या हो गया? भगवान से कुछ वरदान आशीर्वाद मांगना चाहिए, और वो क्या आशीर्वाद क्या वरदान? भगवान की प्रेमा भक्ति। और जो चौथा जो अंग है वो बहुत महत्वपूर्ण अंग है, वो भगवान से हमें क्षमा मांगना चाहिए। भगवान से क्षमा मांगना चाहिए। किस चीज की क्षमा मांगना चाहिए? फॉरगिवनेस। किस चीज की फॉरगिवनेस? क्षमा मांगना चाहिए अपने आलस्य के लिए, कि भगवान आपने सारी सुविधा दे दी है, प्रभुपाद जी आपने इतना बड़ा मंदिर बना दिया, इतना बड़ा बलराम हॉल, कृष्णा हॉल, सब सुविधा दे दी हम लोगों को प्रभुपाद जी ने, लेकिन फिर भी मैं अपने आलस्य के कारण आपकी भक्ति में नहीं लग पा रहा हूं। हर चीज की सुविधा है, देखिए शाम को कृष्णा बुक रीडिंग भी होगी, प्रभुपाद लीलामृत भी होगी, कथा भी होती है, कीर्तन भी होता है, 24 आवर कीर्तन हो रहा है, फिर भी मैं इतना आलसी हूं कि आपकी भक्ति में नहीं लग पा रहा हूं। इतनी सारी सुविधाएं, इतने सारे भक्ति वृक्ष प्रोग्राम चलते हैं इस्कॉन के 700 से भी ज्यादा सेंटर हैं पूरे वर्ल्ड में, फिर भी हम इतने आलसी हैं कि हम नहीं जा पा रहे हैं। आप सब तो बहुत अच्छे हैं, आप सब तो सुबह सुबह भगवान की कथा सुनने के लिए आए, लेकिन फिर भी कई जगहों पर हम आलस्य कर जाते हैं। तो अपने आलस्य के लिए हमें भगवान से प्रार्थना क्षमा मांगनी चाहिए। और किस चीज के लिए क्षमा मांगनी चाहिए? जानबूझ के जब हम कोई अपराध करते हैं उसके लिए हमें क्षमा मांगनी चाहिए। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से प्रेम नहीं करता। समो अहम सर्वभूतेषु ना मे द्वेषो अस्ति ना प्रियः, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मई ते तेषु चापि अहम्। जो मेरा प्रेम पूर्वक भजन करता है मैं उसका हो जाता हूं और वो मेरा हो जाता है। लेकिन वो हो कैसे पाएगा? जब हम इन अपराधों से अपने आप को बचाएंगे। हमारे आचार्य प्रार्थनाओं में बताते हैं क्या? अपराध सहस्त्र भाजनम पतितम भीम भवार्णवोदरे अगतिम शरणागतिम हरे कृपया केवलम आत्मसात कुरु। अपराध, अपराध करने से हम बार 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 और भक्ति में नीचे जाते जाते हैं। तो इसलिए फॉरगिवनेस, किस लिए क्षमा मांगनी चाहिए? भगवान मुझे, मैं जितने भी अपराध करता हूं उससे क्षमा दें, और मेरे अपराध करने की जो प्रवृत्ति है उसको क्या करें आप, समाप्त करें। तो चार अंग हो गए प्रार्थनाओं के, क्या क्या चार अंग? सबसे पहले गुणगान, दूसरा विनम्रता और कृतज्ञता का भाव, तीसरा अंग प्रार्थनाओं का वरदान आशीर्वाद मांगना चाहिए भगवान से, और चौथा क्या हो गया, भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। ये चार अंग। प्रार्थनाएं जो है तीन गुणों में होती हैं, जैसे भगवद गीता में बताया भगवान ने क्या, त्रय गुण्या विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। त्रय गुण्या विषया वेदा, वेद वेदों में जितने भी विषय बताए गए तीन गुणों में अंतर्गत आते हैं, सतोगुणी पुराण, रजोगुणी शास्त्र और तमोगुणी शास्त्र। इसी प्रकार से प्रार्थनाएं भी तीन प्रकार की होती हैं, क्या क्या? सतोगुणी प्रार्थना, रजोगुणी प्रार्थना, तमोगुणी प्रार्थना। लालसा मई भी है, दैट इज वो अलग प्रकार से है। यस, हम लोग इस पर चर्चा करने जा रहे हैं तीन गुणों में प्रार्थनाएं। सतोगुणी प्रार्थना, सतोगुणी प्रार्थना में भक्त और जो व्यक्ति होता है वो भगवान से प्रार्थना करता है शांति, सुख और भगवान की सेवा। और शांति कैसे मिलेगी? शांति का फॉर्मूला बताया भगवान ने गीता में, क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम। ये है शांति का फॉर्मूला, कि जब हम भगवान को ही हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर कार्य का भोक्ता समझेंगे। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मरिच्छसी। तो सुख सतोगुण, सतोगुण में भक्त जो है ये प्रार्थना करते हैं, सतोगुणी प्रार्थना। रजोगुणी प्रार्थना क्या होती है? धनम देही, जन्म देही, सुंदरिम देही, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये कैसी प्रार्थना है? ये रजोगुणी प्रार्थना है, रजोगुण में, जिसमें भौतिक इच्छाएं होती हैं। और अंत में किसने, कौन सी प्रार्थना होती है? तमोगुणी। तमोगुणी प्रार्थना जैसे क्या, कोई भी वरदान मिले ताकि मैं सबको वश में कर लूं, सबका है, जैसे रावण, हिरण्यकश्यप, ये कैसी प्रार्थना थी? तमोगुणी प्रार्थना, मैं सबका ईश्वर, अहम ईश्वर, अहम स्वामी, अहम भोगी, कर्ता अहम। तो ये हो गई तमोगुणी प्रार्थना। तो ये तीन गुणों में प्रार्थनाएं होती हैं। भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि भक्ति में प्रार्थना करें, इन तीनों गुणों में प्रार्थनाएं नहीं। क्यों? भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं तीनों गुणों से उठ करके प्रार्थना करो। त्रय गुण्या विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। भक्त के हृदय में केवल यही प्रार्थना रहती है। क्या प्रार्थना रहती है? कि हे भगवान, हे राधा कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। वही प्रार्थना गजेंद्र भी कर रहे हैं, वही प्रार्थना महाजनों ने भी करी, वही प्रार्थना हमारे आचार्य भी करते हैं, और प्रभुपाद जी ने भी हमें यही प्रार्थना करने के लिए बताया। तो आज का ये जो वर्णन था प्रार्थनाओं के ऊपर, इसके ऊपर हमने चर्चा किया। आप सबका ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ठीक ठीक 9 बजे हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, एक या दो प्रश्न। प्रश्न किसी का? किधर से? माता जी की तरफ से प्रश्न है। अच्छा,
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ, एक प्रश्न है। पीछे आप लोग अगर जा रहे हैं तो शांति से जाएं, सतोगुणी तरीके से। जी माता जी।
प्रभु जी, प्रभु जी आपने प्रार्थनाओं पे बड़ा अच्छा बताया, लेकिन जब हम भगवान के सामने जाते हैं, भागवतम भी पढ़े हैं, पढ़ते हैं, अभी भी सेकंड टाइम में भागवतम पढ़ रही हूँ, तो प्रार्थनाओं से पूरा भरा, पूरा भागवतम, लेकिन भगवान के सामने जाते हैं, सोचते हैं कि प्रेयर करेंगे, कुछ भगवान गुणगान करेंगे, लेकिन वहां जाके भगवान का जब दर्शन करते राधा पार्षदी के, श्याम सुंदर के पास, कुछ याद ही नहीं रहता है कि आप उसके बारे में आप कुछ बताएंगे?
प्रार्थनाएं याद नहीं रहती हैं, कलयुग के जीव हैं प्रभु जी, क्या करें। कलयुग में, कलयुग के लक्षण हैं, कलयुग के लक्षण है मंदा सुमंद मतयो, मंद भाग्य ही उपाद्रता, मंद बुद्धि है प्रभु जी, क्या करें है? यही प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, भगवान मैं देखिए इतनी मंद बुद्धि हूं कि मुझे प्रार्थना भी नहीं याद रहती आपके सामने, कम से कम ये तो प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान आपके सामने आते हैं, हमें प्रार्थना भी नहीं याद रहती है। और भी तरीका है, पर्ची पे लिख करके ले जाए प्रार्थना। यस, नकल करने में क्या गलत है भगवान के सामने? भगवान के सामने प्रार्थनाओं की पुस्तक ले जाएं, भगवान के सामने पढ़ें, याद करें प्रार्थनाओं को। इतने श्लोक हैं याद करने के लिए, हमारे आचार्यों ने कितने वैष्णव गीत लिखे हैं, ये सब किस लिए हैं? और प्रिंट करने के लिए, छापने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं, किस लिए है ये सब? याद करके दोहराने के लिए। पुस्तकें हैं, पुस्तकें हम ले जाएं भगवान के सामने, ले जा करके उसको पढ़ें, इतने तरीके हैं, शर्म किस चीज की? तो इसलिए हमें भगवान के सामने जाना चाहिए, श्लोक या फिर प्रार्थनाएं पढ़ना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है? एटलीस्ट, सॉरी आपके पास, एटलीस्ट भगवान के सामने जाते हैं, कुछ नहीं याद रहता है, ये तो याद रहता होगा, शिक्षाष्टकम तो याद रहता होगा। मुझे याद है मैं पहली बार जगन्नाथपुरी गया, तो जगन्नाथपुरी में पहले जब हम जाते थे तो सीधा भगवान के गर्भगृह में अंदर जाते थे, बिल्कुल सामने ऐसे मैं खड़ा हूं, ये जहां ये प्रभु बैठे हैं ऐसे जगन्नाथ जी हैं, और मैं सामने देख करके क्या करें। तो हमारे बगल में एक वरिष्ठ भक्त, मैं पूछा प्रभु जी क्या प्रार्थना करनी चाहिए, बोले शिक्षाष्टकम पढ़ो। शिक्षाष्टकम हम लोग बेस में पढ़ते थे डेली, पूरा शिक्षाष्टकम मैंने भगवान के सामने पढ़ा। शिक्षाष्टकम क्या है? प्रार्थनाएं। तो प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी इतनी प्रार्थना दे रखी है हम सबको, वही अगर हम भगवान के सामने दोहराएंगे तो कोई बहुत बड़ा पंडित बनने का, बहुत बड़ा आचार्य बनने का, बहुत श्लोक याद करने का क्वालिफिकेशन जरूरत नहीं है। याद करें तो बहुत अच्छा है, और आनंद आएगा फिर प्रार्थनाएं दोहराने में। राजा कुलशेखर की प्रार्थना, कुंती महारानी की प्रार्थना, पृथु महाराज की प्रार्थना, और याद करेंगे तो और आनंद आएगा, ठीक है? आनंद आएगा प्रार्थना करने में फिर। यस प्रभु, प्रश्न का उत्तर मिल गया?
हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे मैं एक दिन छठवां स्कंद पढ़ रहा था तो उसमें वृत्तासुर की कथा आती है, ननाक पृष्ठ न चपार विष्टभ न सर्वभव रसाधिपत्य दायोग सिद्धिर न पुनर्भव सवाजसस्वाव विरहस्य काचे। तो प्रभु जी वृत्तासुर की तरह प्रार्थना कैसे आएगी?
ऐसे ही आएगी। आप तो ऑलरेडी कर रहे हैं, आप कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली। अगर मैं इतना भाग्यशाली होता तो फिर क्या ही बात थी, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको इतने श्लोक याद हैं, आपको इतनी प्रार्थनाएं याद हैं, यही चाहिए। और प्रार्थना करते समय यह भी याद रखना है कि केवल बच्चे जैसे छोटे होते उनको दोहरा रटा दिया जाता है, रट लेते हैं, हम भी श्लोक रट लेते हैं, याद कर लेते हैं वर्ड बाई वर्ड, सुबह सुबह श्लोका क्लास में रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन हमें प्रार्थना जो करनी है एक भाव के साथ, फीलिंग के साथ करनी है, और उसके लिए इसका अर्थ पता होना बहुत जरूरी है। जो भी आप श्लोक याद करें प्रभु, उसका अर्थ याद करें, अर्थ के साथ जब प्रार्थनाएं याद होंगी तब आप उसको, तब वो आपकी प्रार्थना हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? नहीं तो अभी वो किसकी प्रार्थना है? वृत्तासुर की। जब आप उसको अर्थ के साथ बोलेंगे तो किसकी प्रार्थना हो जाएगी? वो आपकी प्रार्थना है, आप प्रार्थना कर रहे हैं। फिर जब आप श्लोक दोहरा रहे हैं बिना अर्थ जाने तो आप किसकी प्रार्थना दोहरा रहे हैं? वृत्तासुर की, ठीक है? इसीलिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने देखिए वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन दिया है, वर्ड बाय वर्ड याद, उसको अर्थ जानो, एक एक शब्द का अर्थ जानो और उसको याद करके, स्मरण करके, अंदर धारण करके तब दोहराओ, ठीक है प्रभु? तो अर्थ के साथ अपनी प्रार्थना, उसको अपनी प्रार्थना बनाइए, वृत्तासुर की प्रार्थना नहीं, आपकी प्रार्थना, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आशा करते हैं कि मैंने कुछ त्रुटि नहीं करी होगी। आप सबको कुछ भी अच्छा लगा तो आशीर्वाद दीजिएगा और कुछ भी गलत बोला तो क्षमा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेम आनंदे हरि हरि ओम।